ओम शांति। एक बहुत बड़े फार्म हाउस के मालिक को किसी मददगार व्यक्ति की आवश्यकता थी। वो फार्म हाउस बहुत बड़ा था और जो मालिक किसान था वो अकेला था, इसलिए उसने विज्ञापन दिया और एक नवयुवक दूसरे दिन आया। उस फार्म हाउस के मालिक ने उस युवक से पूछा, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? उस युवक ने कहा, आई कैन स्लीप थ्रू द स्टॉर्म। उसने कहा कि जब तूफान आता है तब मैं सोता हूं। ऐसा विचित्र उत्तर पाकर वो मालिक थोड़ा अचरज में पड़ता है, परंतु उसे वो युवक बहुत पसंद आ जाता है। फिर भी बिना किसी कारण के, और वो उससे कहता है कि तुम कल से आ जाओ, और वो युवक वहां आने लगता है। कुछ हफ्तों के बाद एक रात भयंकर आंधी और भयंकर तूफान आता है। आधी रात का समय है और वो मालिक और उसकी पत्नी उठते हैं और सबसे पहले तो उस युवक को ढूंढते हैं कि जिसको रखा था सारी देखभाल करने के लिए, और जब ढूंढते हैं तो पाते हैं वो तो एक जगह सो रहा है। बहुत चिढ़ जाते हैं दोनों, क्या इसलिए तनख्वाह देते हैं इसको? फिर वो सोचते हैं अब इसको उठाने का भी समय नहीं है, तो फटाफट सारी चीजों को देखने लगते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फार्म हाउस का जो शटर है वो बंद किया हुआ है। फिर देखते हैं गेहूं की जो बालियां थी वो तिरपाल में अच्छे से बांधी हुई है। फिर देखते हैं जहां पर आग जलाई थी, ठंड का मौसम, वहां पर्याप्त मात्रा में लकड़ियां रखी हुई है। फिर देखते हैं मवेशियों को, वो गाय और भैंसों को, वो सुरक्षित है। और फिर देखते हैं खलियान को, वो भी बंद है, लॉक्ड है। फिर देखते हैं फार्म हाउस में प्रयोग किए हुए औजारों को, सामानों को, वो भी सब कुछ सुरक्षित है। और तब मालिक को समझ में आता है ये इसने क्या कहा था, कि जब तूफान आता है तो मैं सोता हूं। तो तूफान आया और वो सोया था, पर वो सोया था इसलिए क्योंकि सब कुछ व्यवस्थित, सब कुछ सुनिश्चित कर कर वो सोया था, सारी तैयारी कर कर वो सोया था, और सो भी इसलिए रहा था क्योंकि तैयारी थी। अगर तैयारी ना होती तो तूफान में भागना पड़ता, क्योंकि सब कुछ उसने किया था इसलिए सो पाया। कल सुबह की अव्यक्त वाणी, तुम्हें भी क्या करना है, सारी समय से पहले तैयारी करके रखनी है। जब समय से पहले सारी तैयारी होगी तो ही आराम से क्या कर सकेंगे, सो सकेंगे, नहीं तो तूफान आएगा। एक भी कमजोरी ना हो, समय के भरोसे रहेंगे तो क्या होगा, धोखा होगा। बच्चे आपस में रूरियान करते हैं, बच्चे बाप से रूरियान करते हैं, बच्चे साधारण ढंग से कहते हैं क्या समय पर ठीक कर लेंगे, हो जाएगा, पार कर लेंगे, पर ऐसा होगा नहीं। लंबे समय का पुरुषार्थ, लंबे समय की तैयारी, लंबे समय का शरीरीपन, लंबे समय का अभ्यास, ये अंततः विजय प्राप्त कराएगा। तो जब तूफान आए तो हम भी सो जाए, परंतु सोने से पहले खलियान को लॉक, सोने से पहले सारी गाय और सारी भैंस सुरक्षित, और सोने से पहले आग जो जल रही है वहां पर पर्याप्त लकड़ियां, और सोने से पहले जो सारे औजार है वो सभी सुरक्षित, और सोने से पहले सब कुछ ठीक से बांधा हुआ, लपेटा हुआ, ऐसी हमारी तैयारी हो तो कल की अव्यक्तवाणी। बहुत सी गहरी बातें उसमें बाबा ने बताई, ऐसी छह चीजें, छह बातों की हम चर्चा करेंगे। एक में एक, दो में दो, तीन में तीन, चार में चार, पांच में पांच और छह में छह, तो कितनी हो गई, उतनी बातों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक में एक, एक अर्थात एक भी कमजोरी अगर रह जाए तो क्या होगा, माया का रास्ता खुल जाएगा, माया का वार होगा। एक अर्थात एक भी कमजोरी न रहे। यूनान का सबसे मशहूर और सबसे शक्तिशाली योद्धा अकिलिस, अंग्रेजी में कहावत है अकिलिस हिल, वो जब पैदा हुआ तो भविष्यवाणी हुई कि इससे महान योद्धा इस संसार में और कोई नहीं होगा। उसकी मां जो थी उसने उस छोटे से बच्चे का केड़ी पकड़ी और उसे एक रहस्यमय नदी में डुबो दिया। उस नदी के लिए गायन था कि जो उसमें डुबोया जाएगा वो वज्र का हो जाएगा, उसे कोई भी जीत नहीं सकेगा, वो अजय होगा। परंतु वो उसकी एड़ी पकड़ती है और वो एड़ी का हिस्सा रह जाता है, और जैसे जैसे वो अकिलिस बड़ा होता है, इतना शक्तिशाली, जैसे भारत में रामायण है और जिसका महानायक राम है, वैसे यूनान में होमर का लिखा हुआ इलियाड नाम का किताब है जिसे महाग्रंथ माना जाता है, उसका महानायक अकिलिस है, जिसकी ट्रॉय के युद्ध में मृत्यु हुई। और जब शत्रु को यह पता चल गया कि कुछ भी करो अकिलिस तो मरता ही नहीं, और एक दिन पता चल जाता है इसकी एड़ी कमजोर है, और वो शत्रु पेरिस नाम का एक दिन वहीं पर वार कर देता है और अकिलिस की मृत्यु हो जाती है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है अकिलिस हिल, अर्थात किसी व्यक्ति का सबसे कमजोर बिंदु, बाकी सब ठीक है पर एक ही बस कमजोरी रह गई है। जैसे दुर्योधन सारा शरीर वज्र का हो गया परंतु जंघा कमजोर रह गई, और भीम ने आखिर क्या कर दिया, युद्ध के नियमों के विरुद्ध वहीं पर मार दिया और धराशायी हो गया। एक कमजोरी, कितनी सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, एक भी छोटी से छोटी भी हम में कमजोरी न रहे, कोई खामी, कोई फ्लॉ, कोई डिफेक्ट, कोई दाग, कोई कलंक, कोई कलमश, कोई एलॉय, कोई खाद, कुछ न रहे। एक भी रहेगी, अंश भी, तो क्या होगा, माया का वंश पैदा हो जाएगा उस एक छोटी सी बात से। इसके लिए अध्यात्म की यात्रा, आत्मनिरीक्षण की यात्रा है। अध्यात्म की यात्रा आत्मत्याग की यात्रा है। बाप को कैसे बच्चे पसंद है? सुबह जो सब कुछ त्याग कर देते हैं, जो वही दिल पर बैठते हैं बाप के, आत्मत्याग। तो एक भी कमजोरी न रहे। यदि हम डायमंड हॉल का उदाहरण ले, 44 दरवाजे हैं, बाहर तेज तूफान और आंधी आ रही है, सारे दरवाजे हमने बंद कर दिए और एक दरवाजा खोल के रखा, सोचा एक से क्या होता है, तो कुछ होगा या नहीं होगा? इतने सारे दरवाजे तो बंद रखे, बाकी बस एक छोटा सा एक दरवाजा खोल के रखा है, फिर भी वो तूफान सारा जो बाहर, वो उसे एक ही दरवाजे से अंदर आ जाएगा। बाकी सब तो जीत लिया है, एक छोड़ के रखा है बस। और वर्तमान समय माया की नजर किस पर है? हमारी छोटी सी छोटी कमजोरी पर, और वही हम धोखा खाएंगे। इसलिए एक भी कमजोरी न रहे, चाहे कितना भी बड़ा योद्धा हो, शक्तिशाली हो, परंतु उसकी एक कमजोरी यदि पकड़ में आ जाए शत्रु को, जैसे नेपोलियन के लिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बिल्ली वाली बात नहीं, दूसरी बात। बिल्ली वाली तो थोड़ी प्रसिद्ध है, कहां तक सत्य है पता नहीं, जो नेपोलियन की हार हो गई। नेपोलियन जब बहुत छोटा था, बचपन से स्वप्न देखता था सारे विश्व पर राज्य करूं, नक्शा लिया एक दिन भूगोल, क्योंकि जिसे विश्व पर राज्य करना है उसे देखना तो चाहिए कहां कहां राज्य करना है, और उसने सोचा यहां भी राज्य करूंगा, यहां भी। एक छोटा सा टापू उसे दिखा, सेंट हेलिना का, उसने लगा, पता नहीं क्यों उसे लगा, वहां मार्क कर दिया और कहा इसको मैं छोड़ता हूं, इतने छोटे से टापू में मैं क्या करूंगा, मुझे तो सारे विश्व को जीतना है। और एक दिन जब उसके शत्रु को उसकी एक कमजोरी का पता चला और उसकी हार हो गई, तब उसे बंदी बनाया गया और नेपोलियन को उसके जीवन के अंतिम 6 वर्ष, 1815 to 1821, उस टापू में बंदी रखा गया। किस टापू में? सेंट हेलिना के टापू में, जो उसने बचपन में सोचा था इसको मैं छोड़ देता हूं, यहां मेरा कौन शत्रु होगा, और वहीं पर उसकी मृत्यु होती है, बड़ी ही दर्दनाक मृत्यु, जहां पर बहुत कम सामान होता है सुख सुविधा के, और इतना बड़ा योद्धा जिसने पूरे यूरोप पर शासन किया था, और जिसके लिए कहा जाता है उससे बड़ा कोई योद्धा इस संसार में हुआ नहीं उस समय, वो नेपोलियन भी अंतिम 6 वर्ष उस टापू पर अकेला बंदी रहा और फिर मर गया एक दिन। क्या सोचा था उसने? ये टापू को मैं छोड़ देता हूं, और उसी में मर गया। तो छोटी सी छोटी कमजोरी को भी हल्का नहीं लेना। जिस कमजोरी ने हमें कभी हराया था, वो कमजोरी फिर आएगी। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बीए का पेपर एमएम में फिर आएगा। जो बीए पास कर ली और उसमें जो पेपर आए थे ज्ञान में शुरुआत में, और फिर हमने उसको बड़ी लगन से, कोई हमें रोक नहीं सकता, जिसको जो करना है करे, एकदम तोड़ताड़ तलवारी चला दी थी घर वालों पर, कोई मेरे मार्ग में नहीं आना, और पेपर पास कर लिया, और बहुत समय बीत गया, अब निश्चिंत है कि वो पेपर फिर नहीं आएगा, वो पेपर फिर से आएगा, बीए का पेपर एमए में फिर आएगा। इसलिए एक भी कमजोरी को खुद का न छोड़ना। और धन्यवाद उन लोगों को करना है जो हमें अपनी कमजोरी के बारे में जानकारी दे, बजाय इसके पर उन पर गुस्सा हो कि तुम्हारी ये हिम्मत, तुम रोज सोते हो और मुझे एक बार सोते हुए देख लिया, मैंने कभी तुमको बोला? किसी धर्म सम्मेलन में बहुत सारे धर्म गुरु आए और महान विषयों पर गहरे से गहरी चर्चाएं हुई, त्याग, सत्य, ब्रह्मचर्य, वैराग, तपस्या, सारा जन समुदाय मंत्र मुग्ध, ऐसी महान हस्तियां भी हमारे देश में हैं, ऐसी गहरी गहरी चर्चाएं हुई उस धर्म सम्मेलन में, जो लोगों ने सोचा नहीं था इतना, इतनी विषयों के इतनी गहराई में वो लोग जा रहे थे। व्यासपीठ पर बैठे सभी महान आत्माएं, धर्म सम्मेलन पूरा हुआ, सारे धर्म गुरु एक कमरे में आए और कहने लगे, वहां की बात वहां रही, अब अपने दिल की बात थोड़ी करते हैं। बहुत भाषण ठोक दिए, पर हम तो एक ही धंधे वाले हैं, तो क्यों ना अपने दिल की बात आपस में कर ले। और उसमें से जो सबसे बुजुर्ग था उसने कहा कि मेरी सबसे ज्यादा पकड़ धन पर है, ऐसा कोई प्रवचन नहीं जिसके में मैं धन के विरुद्ध में ना बोलूं। लोगों को कहता हूं कि धन व्यर्थ है, धन माया है, धन को छोड़ देना चाहिए और ईश्वर के ऊपर अर्पित हो जाओ, सारा धन प्रभु अर्पण कर दो। पर मैं आज तुम सबके बीच में, जब यहां और कोई नहीं है, हम सब अपने ही लोग हैं, एक ही धंधे वाले, एक बात आप सबको आज बता देता हूं कि बिना धन को देखे मुझे नींद भी नहीं आती है। जब तक प्रवचन के पैसे गिनना नहीं चालू करता तब तक राहत नहीं मिलती, और मेरे पास इतना धन है फिर भी बेचैनी रहती है कि कहां ज्यादा धन मिले। ऐसी ही स्थानों पर जाता हूं प्रवचन करने जहां धन ज्यादा मिले। अब बताओ क्या करूं, मेरी यही एक कमजोरी है। फिर दूसरे ने कहा, आपने इतनी अपने दिल की बात बता दी तो मुझे भी लग रहा है कि मैं भी बताऊं। वैसे धन तो मेरी भी कमजोरी है, पर मेरी कमजोरी कुछ और है, मेरी कमजोरी है ब्रह्मचर्य। ऐसा कोई प्रवचन नहीं जिसमें मैं ऐसे धुआधार प्रवचन करता हूं पवित्रता के बारे में, परंतु मेरी कमजोरी स्त्री, वो चाहिए सभा में, तो ही आवेश आता है, धारा प्रवाह बोल सकता हूं। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तीसरा कहता, ये दो तो मुझ में भी है, परंतु मेरी सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार। जहां मुझे सम्मान नहीं देते वहां तो मैं बिल्कुल देखता भी नहीं, जहां मेरी प्रशंसा नहीं होती है वहां मुझे जाना अच्छा नहीं लगता। एक माला भी अगर गले में कम पड़ी तो बेचैनी होती है, 10 माला पड़ी, पैसे पूरे 11 के दिए थे, एक कहां गई। चौथे ने कहा, मैं तो ये मान लेता हूं कि ये तीनों ही कमजोरी मुझ में है, मुझे कोई उपाय बताओ, आप तो फिर भी एक एक है, मुझ में तो ये तीनों कमजोरियां हैं। और इतना सुनते ही पांचवा जो होता है वो भागने लगता है, उसको कहता है, तुम कहां जा रहे हो, अपनी कमजोरी तो बताओ, हमने अपना सब कुछ बता दिया तुम्हारे सामने, तुम भी तो कुछ बताओ। वो कहता है, मुझे माफ करना, मेरी कमजोरी है यहां की बातें वहां, मेरी एक ही कमजोरी है कि अभी मैं जा रहा हूं एक एक चैनल के पास इंटरव्यू देने के लिए, जब तक तुम सबकी बातें सबको नहीं बता देता मुझे चैन नहीं है। वो कहते हैं, रुको कुछ हमारी तो सोचो। कहते हैं, सोचने की बात ही नहीं, मेरी तो कमजोरी ये है। और वो भाग जाता है। तो कमजोरी किसके सामने प्रकट करनी, वो भी एक अच्छा प्रश्न है। कल की अव्यक्त, कल की, परसों की साकार मुरली, जो भी पाप किए है क्या कर दो, बाप के सामने बता दो, तो क्या हो जाओगे, हल्का हो जाओगे। जो कुछ किया है, जो कमजोरी है, जो खामी है, जो फ्लॉ है, जो डिफेक्ट है, जो इम्परफेक्शन है, जो एक संस्कार है जो मिटता नहीं, सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं जा रहा, और जितने लोगों से पूछा उतनी ही संस्कार और ही उलझता गया, किसी ने कोई मार्ग नहीं बताया। एक भी कमजोरी न रहे। बाबा का हमसे इतना प्यार है इसलिए वो हमारी कमजोरी देखना नहीं चाहता। कई बार मुरलियों में प्यार वाक्य आता है कि जिससे अति प्रेम होता है उसकी कोई भी कमजोरी प्रेमी देख नहीं सकता। अपनी खातिर नहीं तो कम से कम उसकी खातिर, फॉर माई सेक, फॉर माई सेक। तो अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी का चिंतन करना है और उसको मिटाना है। कुछ दिन पहले मुरलियों में आया था, ये जो बंधन है इनको क्या करना है, तोड़ना नहीं है, तोड़ेंगे तो गांठ रह जाएगी, क्या करना है, भस्म करना है। और भस्म करने के लिए क्या चाहिए, आग, आग चाहिए, आग। सुबह की वाणी में है, याद में मस्त रहो, मस्ती चाहिए रूहानी, तड़प चाहिए, प्रेम चाहिए, विरह चाहिए, त्यागाग्नि चाहिए, उत्साहाग्नि चाहिए, उल्लासाग्नि चाहिए। तो ये पहली बात कमजोरी। दो, दो में दो बातें, एक बाप शिक्षक और दूसरा समय शिक्षक। किसको शिक्षक बनाना है, बाप को, समय को नहीं, क्योंकि समय तो अज्ञानियों का भी शिक्षक है। जब बाढ़ आ जाएगी, जब तूफान आ जाएगा, तब वैराग आ जाना। एक बात, पहले से ही वैरागी, और वैराग की निशानी चाहना ना, चाहना अर्थात चूरा। 15 दिन क्या खाया था, ढोड़ा और छाछ, कुछ भी ना रहे, फिर भी फिर अचल, सारे सुख साधन सुविधाएं एक दिन समाप्त हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, उसमें भी स्थिर। तो उसकी अभ्यास कब से करना है, तब या अब, अब कठिन से कठिन परिस्थितियों में जीने का अभ्यास। इसमें एक उदाहरण है स्वामी विवेकानंद का। यहां से भारत से गए, शिकागो पहुंचे, और पहुंचने के बाद पैसे थोड़े से थे, रहना कहां पता नहीं, भारत वालों ने तो भेज दिया, कोई लेटर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, वैसे भेज दिया। वो युवक वहां पहुंचा, हर स्थान पर जाने लगा कि कहां रहने की सुविधा मिले, और हर जगह लिखा हुआ था हर होटल पर, इंडियंस एंड डॉग्स आर प्रोहिबिटेड टू एंटर, भारतीय और कुत्ते अलाउड नहीं है इस होटल में। और बड़ी मुश्किल से एक होटल मिल गया। उस होटल के मैनेजर ने कहा, यहां रह तो सकते हो पर खाने की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। कितने ही दिन बिना भोजन के रहे, और वहां जाकर पता चला जिस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, जो धर्म सम्मेलन था, वो अभी 2.5 महीने दूर है। और फिर उस कार्यालय में गए, कार्यालय के लोगों ने कहा, आपके पास लेटर है कि आप हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करने आए हो, क्या हिंदुओं ने आपको कोई लेटर दिया? उन्होंने कहा, मेरे पास कोई लेटर नहीं है। उन्होंने कहा, आपने पहले इन्फॉर्म किया, रजिस्ट्रेशन जो होने वाला था वो तो पूरा हो गया, आप जा सकते हो। वो वापस आए, पैसे नहीं, कुछ नहीं, सोचा आप ये सम्मेलन को छोड़ो, बोस्टन में जाते हैं। वहां से निकले, ट्रेन में बैठे, बोस्टन के लिए वहां थोड़ा खर्चा कम है, यहां बहुत ज्यादा खर्चा है शिकागो में। वहां एक व्यक्ति ने उनको देखा, एक महिला ने, और उसने कहा कि कौन हो, कहां से हो। उसने बताया और उन्होंने कहा कि आप मेरे घर चलो। वापस लेके आई, अपने घर रखा कुछ दिन। वहां एक दूसरे व्यक्ति को बुलाया जो कि बहुत बड़े प्रोफेसर थे किसी यूनिवर्सिटी में, और उस प्रोफेसर ने उनसे कहा कि तुम किस लिए आए हो। तो उसने कहा कि मैं ऐसे ऐसे आया हूं यहां पर मेरे पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो उस प्रोफेसर ने कहा अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ थोड़ी चर्चा करो। और उन्होंने जो चर्चा की, और उस चर्चा के बाद उन्होंने एक वाक्य लिखा। उन्होंने उस धर्म सम्मेलन के जो लोग थे उनको लिखा कि हियर इज द मैन हु इज मच इंटेलिजेंट देन ऑल द प्रोफेसर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पुट टुगेदर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जितने प्रोफेसर हैं उन सबको मिला लिया जाए तो उनसे भी अधिक बुद्धिमान ये व्यक्ति है, और तब कहीं जाके उनको वहां प्रवेश मिलता है। उसके बाद में भी वो वापस वहां जाते हैं, वापस कई दिनों तक कुछ भी नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं। तो हर परिस्थिति में व्यक्ति कैसा रहे, अचल, स्थिर, इसके लिए समय हमारा शिक्षक नहीं है, हम समय के शिक्षक हैं, हम समय के रचता है, बाप हमारा शिक्षक है। तो ये दो बातें, पहली दो में समय शिक्षक, बाप शिक्षक। तो समय के लिए इंतजार नहीं करना है, एक तो दो, और दो बातें हैं, बाप का हमसे वायदा और हमारा बाप से वायदा। बाप का हमसे क्या वायदा है? जहां मेरी याद है वहां मैं साथ हूं। और माया की चैलेंज, जहां कमजोरी है वहां मैं व्यापक हूं, जहां एक भी कमजोरी है अकेले हिल वहां माया आ जाएगी। और हमारा बाप से क्या वायदा है? ये बाप का हमसे वायदा था, हमारा उससे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, साथ आएंगे। इसलिए अभी स्वयं को संपन्न संपूर्ण बनना है, वो संपन्न संपूर्ण है तो हम भी संपन्न और संपूर्ण रहे। और ब्राह्मण जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल कौन सा है? आज की मुरली का वरदान, भगवान से समीपता, इससे बड़ा कोई फल नहीं है। भगवान के समीप रहना, उसके साथ रहना, उसका सामीप्य, उसकी निकटता, वो निकटवर्ती अनुभव हो, वो सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ फल है इस ब्राह्मण जीवन का। इसके लिए उसकी उसका हमसे वायदा है तो हमारा उससे भी वायदा है। ये हो गई दो। फिर है तीन से तीन बातें। कितने प्रकार के बच्चे देखे बाबा ने, किसने देखे? सर्वशक्तिवान बाप ने किसको देखा? शक्ति सेना को देखा। इस शक्ति सेना में तीन प्रकार के बच्चे थे, कौन कौन से? एक तो वो, कौन से? वो, और दूसरे वो, और तीसरे वो। पहले वो कौन से? जिनके पास सदा शक्ति है, सदा शस्त्र है, सदा शक्ति रूपी अस्त्र शस्त्र है, ऐसे अलौकिक, ऐसे महावीर, ऐसे विशेष, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को देखा जो निरंतर शक्तिशाली है, जिनके पास अस्त्र शस्त्र निरंतर है, ऐसे शस्त्रधारी ये टॉप लेवल के बच्चे हैं। सारे दिन भर इनके पास शस्त्र रहते हैं, कभी भी शस्त्र विहीन नहीं है, शक्ति विहीन नहीं है। इसलिए अमृत वेला एक अभ्यास करना है कि बाप शक्तिशाली सर्वशक्तिवान है, वो बीज, वो बिंदु, उससे मुझ में अष्ट शक्ति आ रही है, और एक एक शक्ति को मन में रिवाइज करना। अभी सहनशीलता की शक्ति मुझ में आ रही है, अभी समाने की शक्ति मुझ में आ रही है, सामना करने की शक्ति मुझ में आ रही है, क्योंकि हर दिन क्या होगा पता नहीं, रात दिन भर में इतनी बातें होने वाली है, कुछ भी अज्ञात है सब कुछ। सहयोग की शक्ति मुझ में आ रही है, परखने की शक्ति आ रही है, निर्णय करने की शक्ति आ रही है, संकीर्ण की शक्ति आ रही है, समेटने की शक्ति आ रही है, सारी शक्तियां मुझ में समा रही है। अष्ट शक्तियों से सुसज्जित शक्तियां पीछे पड़ गई, तो सारी शक्तियां मैं आत्मा स्वयं में ग्रहण करती हूं। ये अभ्यास करना है, छोटा सा अभ्यास है पर सारे दिन भर बहुत काम आएगा, क्योंकि सारे दिन भर में बहुत कुछ सीखना सहन करना पड़ेगा। जो जितना अधिक सहन करेगा वो उतना अधिक शक्तिशाली, जो जितना अधिक समाएगा वो उतना अधिक अचल। सिक सिक झुक झुक मरमर, क्योंकि बहुत सी बातें हैं यहां पर। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो पिकनिक वो पढ़ने के लिए किसी दूसरे शहर में जाता है और अपनी मां को एक महीने के बाद खत लिखता है। वो लिखता है, मां मैं जब पहले दिन आया तो सब अपरिचित थे, फिर थोड़ी देर के बाद सब मेरे मित्र बन गए, अब सारे मेरे दुश्मन हैं। उसका ये खत जीवन की कहानी है। पहले दिन सब अपरिचित, दूसरे दिन सब मित्र, और मां अब सभी मेरे दुश्मन हैं। मेरे तरफ से दुश्मनी नहीं है पर शायद उनमें ईर्ष्या है, शायद अवगुणी दृष्टि है। सारे दिन में महासंग्राम है। शक्तियों की आवश्यकता है, शस्त्र चाहिए। रामायण में दिखाते एक शस्त्र इधर से, एक शस्त्र इधर से, एक शस्त्र इधर से, एक शस्त्र इधर से। तो शस्त्र तो पहले बच्चे ये थे, दूसरे समय पर समय प्रमाण। कैसी भाषा है, अलंकारिक। समय पर समय प्रमाण शस्त्रधारी, वो भी सदा नहीं, कभी कभी, कभी है तो कभी नहीं है, और जब नहीं है और माया का आक्रमण हो गया तो गिर जाएंगे नीचे, और फिर पश्चाताप, फिर आंसू, फिर दुख, ये गलती क्यों हो गई, नहीं करनी चाहिए थी, मैं तो ऐसा हूं नहीं, मेरे तो ऐसे संस्कार नहीं है, पर पता नहीं किस अज्ञात समय में वो कमजोरी आ गई, वो संस्कार इमर्ज हो गया और तभी माया आ गई और पूरा दिन वेस्ट हो गया या कुछ घंटे वेस्ट हो गए। पश्चाताप अगर हो रहा है ब्राह्मण जीवन में बार बार तो वो निशानी है अंदर से चेतना सोई है, अभी संपूर्ण जागरण हुआ नहीं है। समय कौन सा चल रहा है, क्या करना है, कुछ पता नहीं है। खुद को जगा के रखना यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, खुद को जागृत रखना बस। ये दूसरे बच्चे, तीसरे युद्ध करने वाले, कभी वार कभी हार। तीसरे बच्चे क्या करते हैं, जब होएगा तब देखा जाएगा, समय पर छोड़ा हुआ है इसलिए हार जीत होती रहती है। तो ये तीन प्रकार के बच्चे, और तीन नदियां देखी पापा ने। कौन सी तीन नदियां, सबसे पहले तो जिनको हिंदी नहीं आती, बाबा ने कहा परंतु उनकी भाषा कौन सी है, स्नेह की भाषा। मुख की भाषा नहीं आती परंतु स्नेह की भाषा आती है, और भगवान को स्नेह की भाषा ज्यादा समझ में आती है। एक वो व्यक्ति है जिसमें स्नेह भरा हुआ है और एक दूसरा है जिसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान अहंकार को जन्म दे सकता है परंतु जो स्नेह से भरा हुआ है वो ज्ञानी से भी ऊंचा है, जहां परमात्मा प्रेम भरा हुआ है। जहां भाषा इतनी समझ में नहीं आती है, शब्द समझ में नहीं आते, भावनाओं को पकड़ते हैं, पर वो प्रभु को अति प्रिय है। तो पहले तो कर्नाटक, दूसरा पंजाब, खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं। ये आंदोलन चला था 1970-80 में, जो कि भारत सरकार द्वारा कुचल दिया गया बाद में। और हम लोग कौन सा नारा लगाते हैं, दैवी राजस्थान का, उसमें शक्तियां नष्ट हुई, उसमें व्यर्थ चला। तीसरा ग्रुप था गुजरात, क्या करते हैं, झूले में झूलता है, सबसे बड़ा झूला कौन सा है, समीपता का, जो आज वरदान में कहा, भगवान के समीप रहना सबसे बड़ी बात है। हमारा जो कांटेक्ट है उसके साथ, जो कनेक्शन है, वो बहुत नजदीक का हो, बहुत नजदीक का। जब चाहे उसका आह्वान कर लेना, जब चाहे उससे बात कर लेना। इसके लिए इसका ध्यान सारे दिन भर रखना होगा। जो दिनचर्या है, सुबह तो ठीक है, अमृत वेला ठीक है, मुरली ठीक है, सुमा शाम का योग ठीक है, रात्रि क्लासेस या रात्रि चिंतन ठीक है, पर जो दिनचर्या का समय है बीच का, उसमें कुछ अभ्यास करने हैं। जैसे आत्मिक दृष्टि, जैसे अशरीरीपन, जैसे रूहानी ड्रिल, जैसे आना और जाना, जैसे अशरीरी हो जाना, जैसे डेड साइलेंस, जैसे ज्ञान चिंतन, बीच के समय में अभ्यास करना। जब बीच को भी ठीक कर दिया तो पूरी दिनचर्या ठीक होगी। और जिसका कुछ भी ठीक नहीं है उसको सबसे पहले अमृत वेला ठीक करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, नुमा शाम का योग को ठीक करना है। दो ठीक होने के बाद फिर दिन को ठीक करना चालू करो, फिर आसान होगा। और जिनका सुबह ठीक है वो फिर शाम को ठीक करे और दिन को भी ठीक करे, और जिनका तीनों ठीक है वो दूसरों को ठीक करे। तो तीन, उसके बाद में चार बातें, चार से चार। बाबा ने कहा तुम्हें सब बातों में फुल बनना है, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण, और चौथा 100% सुख शांति का वर्षा अभी लेना है। यही पढ़ाई का प्रारब्ध या रिजल्ट या अवार्ड ये है, वर्षा यही है, संपूर्ण निर्विकारिता का लक्ष्य। हमारी आंतरिक स्थिति ऐसी हो कि बहुत ज्यादा पवित्रता का अनुभव हो, खींचो, प्यूरिटी खींचे। आंतरिक स्थिति ऐसे हो कि रात को सोते समय लगे कब अमृत वेला आ जाए, पानी आ जाए मुंह में अमृत वेले के लिए, कि अमृत वेला आने वाला है, आहा कब ये शरीर यहीं छोड़ दूं। आज की मुरली में है तुम्हें आवाज से परे जाना है, ये गीत आवाज ये सब नीचे छूट जाए और सब कुछ छोड़ के उस आवाज से परे चली जाए आत्मा। खींचो तो संपूर्ण निर्विकारिता। ऐसे कोई कर्म नहीं कि जिससे सोचना पड़े कि यह नहीं करना चाहिए था, यह नहीं देखना चाहिए था, नहीं सुनना चाहिए था, क्यों कर दिया। ये पश्चाताप करना भी क्या है, समय व्यर्थ करना है, ये भी विकर्म के खाते में। इसी मुरली में बाबा ने कहा है, कना का घना और बाप के पास हिसाब किसका है, कणे कणे का हिसाब है। देता भी बहुत है पर हिसाब भी बहुत रखता है भोलानाथ, है भूलानाथ। सब कुछ भूला हुआ है, किसी के अवगुण चित्त पर नहीं, पर एक दिन वही भालानाथ बन जाएगा। इसलिए संपूर्ण निर्विकारिता। दूसरा, संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त, कोई भी कला कम ना हो। इसलिए कुछ दिन पहले मुरली में था, तुम ऑलराउंडर हो, हर प्रकार की सेवा करनी सीखनी है। आज इधर तो कल उधर, तो कल उधर, तो कल उधर, तो कल उधर, जहां डाल दो एडजस्ट। किसकी जैसा, आलू की जैसा। जैसे आलू हर सब्जी में एडजस्ट हो जाता है, वैसे हर जगह एडजस्ट हो जाए। तीसरा, गुण। एक गुण नहीं है बाकी तो है, 32 है एक नहीं है, 30 है दो नहीं है, सारे गुणों को खींचना है अपने अंदर। इसमें भी योग अभ्यास करना है कि भगवान गुणों का सागर है और मुझ में सारे गुण समा रहे हैं, एक एक गुण भरते जा रहे, स्वयं भगवान ही भर रहा है। गुणों का उसके पास है कुछ, उसमें से निकाल निकाल के भर रहा है। और चौथा, 100% सुख शांति का वर्षा। यदि अभी ब्राह्मण जीवन में दुख महसूस होता है, ऐसा लगता है ये हिसाब किताब क्यों, ये कब खत्म होगा, हमारे जीवन में ये सब शरीर की व्याधियां क्यों, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, जिस जो सब तरफ से ठीक है उसको शरीर की बीमारियां पीछे पड़ी हुई है, जो शरीर से स्वस्थ है उसको मन की बीमारियां पीछे पड़ी हुई है, कुछ ना कुछ दुख रहता है। क्या करे कि जिससे दुख का अनुभव ना हो। इसी मूल्य में आगे बाबा ने कहा है कि तुम ज्ञान सूर्य हो, पंजाब ग्रुप से मुलाकात, तुम्हें क्या करना है, संसार का अंधकार मिटाना है, रात्रि को दिन करना है। तो जो सूरज है वो स्वयं अंधकार में नहीं आ सकता, जो दूसरों की आग बुझाने वाले है वो स्वयं आग की लपेट में, आग की सेक उन्हें नहीं लग सकती। हम संसार का दुख अशांति मिटाने वाले हैं, हम ही दुखी, हम ही अशांत। तो किसी एक आत्मा ने हमसे कहा था कि हम खुद ही दुखी हैं, हम दूसरों को क्या 7 दिन का कोर्स कराएं, हम खुद ही अशांत हैं, दूसरों को क्या बताएं, आओ इधर ब्रह्मा कुमारीज में और हम तुमको शांति देंगे। ये 4 बातें। उसके बाद में 5 शक्तिशाली सोमान है मुरली में। सबसे पहला सोमान तो बहुत सारे एक जगह जो लिखे हैं वो 5 की बात कर रहे हैं। सबसे पहला, मैं विश्व परिवर्तक हूं। किस चीज का आह्वान कर रही हूं, आने वाले प्रत्यक्ष समय का। दूसरा, मैं निमित्त हूं, सुनहरे समय को लाने वाली आत्मा हूं। तीसरा, मैं मास्टर रचता हूं या युग परिवर्तक हूं। यह बहुत पावरफुल समान है। मैं कौन हूं, पूरे युग का परिवर्तन करने वाला हूं, पूरी सत्ता पलटने वाला हूं। जो अभी सत्ता चल रही है वो पूरी पलट दूंगा, युग परिवर्तक। तीसरा, मैं डबल काल का विजयी हूं, समय और मृत्यु दोनों को जीत लिया है, इसलिए मृत्यु का भय नहीं है, मृत्युंजय हूं। मृत्यु आज भी आ जाए तो ठीक, कोई दुख नहीं, मृत्यु भय से मुक्त, और समय का भी विजयी। और 5वां समान, अमर भव का प्रदानी, अमर हूं। तो मैं अमर हूं, मैं विजयी हूं, मैं युग परिवर्तक हूं, मास्टर रचता हूं, निमित्त हूं सुनहरे समय को लाने के लिए, और विश्व परिवर्तक हूं। ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ समान है, ऐसे समानों की संसार के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई घर का बालक ऐसा कहने लगे तो माँ बाप क्या कहेंगे, इसको क्या हो गया, भेकी भेकी बातें कर रहा है। कैसे ऊंचे, कैसे महान, कितने श्रेष्ठ समान है। ये समान केवल रटने के लिए नहीं है, केवल दोहराने के लिए, केवल लिखने के लिए नहीं है, परंतु एक एक समान पर चिंतन करना है कि यदि मैं विश्व परिवर्तक हूं, यदि मैं युग परिवर्तक हूं, तो मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूं, कैसी आंतरिक धारणाएं चाहिए, कैसी निष्कलंक आंतरिक पवित्रता चाहिए, कितने विचार निर्मल और शुद्ध चाहिए, संसार की गंदगी हमें स्पर्श ना करे। इसलिए सभी डिजिटल गंदगी से स्वयं को सुरक्षित रखना है। ये 5। उसके बाद में 6 बातें। अब आप बताएंगे कौन सी 6 बातें हो सकती है। सभी ने मुरली सुनी है। नए युग की 6 बातें। पहला, नया संवंत 1111। दूसरा, नई प्रकृति। तीसरा, नया राज्य, नई आत्माएं। उसके बाद में नया संबंध, और उसके बाद में नए समय का सुख। ये 6 बातें। उस सतयुगी दुनिया का चिंतन करना है, और सतयुग की दुनिया की दो बातें हमको बहुत ज्यादा पसंद है व्यक्तिगत रूप से, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं पर दो बातें सबसे ज्यादा पसंद है, एक पवित्रता और दूसरी प्रकृति, क्योंकि प्रकृति बहुत सत्व प्रधान है, बहुत सुंदर है। बाकी वहां बहुत सारी ढेर सारी चीजें हैं, उसकी दो मुरलियां है वो पढ़ लेना, परंतु ये दो बातें वहां पर है कि वहां पर संपूर्ण पवित्रता है, संबंधों में पवित्रता है, विचार संकल्प वाणी सब में पवित्रता है, पवित्रता का साम्राज्य है। और पवित्रता ऐसी चीज है कि आत्मा का मूल स्वभाव है, मूल गुण है, और पवित्रता शब्द उच्चारण में ही अनुभव समाया हुआ है, शब्द में ही अनुभव की प्रतीति है। तो मैं संपूर्ण पवित्र देवता हूं, नया संवंत, नए संबंध, नए समय का सुख, नया राज्य, नई आत्माएं। नई आत्माएं होगी या यही वाली होगी यहां जो बैठी है? यही होगी, परंतु धुलाई कर कर आएगी वहां पर, एकदम व्हाइट वॉश रहेगी, वही जो इस समय बाजू में बैठी है रहेगी, वही जो इस समय कमरे में साथ में है और कुछ कुछ करती रहती है। महान पुरुषार्थ है 10 माताओं का एक कमरे में रहना, असीम धैर्य साहस सहनशीलता अध्यावसाय सबकी आवश्यकता है उसमें, सारी शक्तियों की आवश्यकता वही है। इसलिए कमरे में जाते ही दरवाजे में सबसे पहले शक्तियों का आह्वान करना, हे अष्ट शक्तियां प्रवेश करो, संधान करो इस धनुष बाण पर, अष्ट शक्तियों का फिर प्रवेश करना, नहीं तो लड़ाई, एक को खिड़की बंद दूसरे को चालू, एक को फैन तेज एक को कम तेज, एक आता है तो धक्का मार कर जाता है पैरों को, एक उठता है तो बाथरूम का नल इतना जोर से चालू करता है, और एक को रात में फोन आते हैं बराबर, हमारे सोते समय ही उसे फोन आते हैं, और किसी को 2 बजे उठने की आदत है, और उसकी यह भावना है कि हम भी उठे, तो नया संबंध, नई आत्माएं, नए समय का सुख, सब कुछ नया होगा। तो ये 6 बातें ऐसे फिर से एक बार पहले रिवाइज करते, 1 में बताया एक भी कमजोरी नहीं रहनी चाहिए, 2 में बताया बाप शिक्षक समय शिक्षक उसका वायदा हमारा वायदा, 3 में बताया 3 प्रकार की आत्माएं और 3 नदियां, 4 में बताया चारों ही बातों में संपूर्ण बनना है, 5 में बताया 5 समान, 6 में बताया आज की मूल्य में क्या समान था, तुम कौन हो, सितारे, ज्ञान सितारे, लकी सितारे, वंडरफुल सितारे, 6 में बताया सतयुग की बातें ऐसे कैसे कैसे, ऐसी अलर्ट आत्माओं को, ऐसी शक्तिशाली आत्माओं को, ऐसी सदा सर्वशक्तियों के शस्त्रधारी आत्माओं को, ऐसे ऐसे बाप को शिक्षक बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे मास्टर रचना आत्माओं को, ऐसी निमित्त आत्माओं को, ऐसे विश्व परिवर्तक आत्माओं को, ऐसे युग परिवर्तक आत्माओं को, ऐसे डबल काल के विजयी आत्माओं को, ऐसे महावीर आत्माओं को, विशेष आत्माओं को, अलौकिक आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसे ऐसे ललकार करने वाली आत्माओं को, ऐसे दैवी राजस्थान स्थापन करने वाली आत्माओं को, ऐसे झूले में झूलने वाली आत्माओं को, ऐसे स्नेह की भाषा समझने वाली आत्माओं को, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं को, ऐसे जो बाप की छत्र छाया के अंदर रहते ऐसी आत्माओं को, ऐसी निर्भय आत्माओं को, बहादुर आत्माओं को, शिव शक्ति आत्माओं को, ऐसे उमंग उत्साह उल्लास हिम्मत के झूले में झूलने वाली पंखों से उड़ने वाली आत्माओं को, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माओं को, ऐसे जिनका ऑक्यूपेशन ही मास्टर ज्ञान सूर्य, ऐसे जो दिन रात को दिन और अंधकार को मिटाने वाली आत्माओं को, ऐसे जो खुद अंधकार में न आने वाली ऐसी आत्माओं को, ऐसे सुनहरा सवेरा लाने वाली आत्माओं को, ऐसे संपन्न संपूर्ण बनने वाली आत्माओं को। बाबा ने कहा ये समय अगर अलबेलेपन में गवा दिया तो बाद में क्या हाय हाय करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसे मास्टर रचता आत्माओं को, ऐसे हो गया, ऐसे सर्वगुण संपन्न आत्माओं को, 100% सुख शांति का वर्षा लेने वाली आत्माओं को, संपूर्ण निर्विकारी आत्माओं को, ऐसे बाप के निरंतर समीपता का अनुभव करने वाली प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्माओं को, ऐसे सबकी दुआएं प्राप्त कर अपने पुरुषार्थ की मेहनत से मुक्त होने वाली आत्माओं को, ऐसे फरिश्तों की चाल और हाल, किसका हाल और चाल, खुशहाल रहने वाली और फरिश्तों की चाल चलने वाली आत्माओं को, ऐसे ढोड़ा और छाछ खाकर भी संतुष्ट रहने वाली आत्माओं को, ऐसे ही चाहना को, चाहना क्या शब्द था, जमादार चूहर क्या, चूहरा, हाँ, उससे मुक्त रहने वाली आत्माओं को डैश 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 बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।